ओम शांति। ये पैनल सेशन में सर्वप्रथम तो हमारे पैनलिस्ट आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी और सुधीर भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्म प्रकाश भाई जी भी आने वाले थे लेकिन वो माउंट आबू चले गए, तो अभी हमारे बीच में भाई जी मोहन सिंघल भाई जी और सुधीर भाई जी हैं। आप सबसे हमने प्रश्न लिए थे, वो प्रश्न आपके अधिकतर स्व पुरुषार्थ और सेवा से संबंधित हैं। तो हम प्रश्न पूछेंगे, एक घंटे का समय है, तो जितने प्रश्नों के उत्तर बन पाएंगे उतना हो पाएगा। पहले मैं मोहन सिंघल भाई जी से पूछ रही हूं, यज्ञ में सेवा करते हुए कई बार संस्कारों का टकराव हो जाता है जिसके कारण हम उनको देखना भी पसंद नहीं करते, फिर भी ड्रामा अनुसार हमें उनके बीच में ही रहना है, एक फैमिली की तरह हो जाता है, और इस कारण कई बार मूड खराब भी हो जाता है। उनके साथ ही काम करना है, उनके साथ ही रहना है, उनसे दूर रहने का प्रयास भी करते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी रहे, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाता। इसका समाधान बताएं जिससे इस परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकें।
ओम शांति। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और हम सभी के सामने जितना हमारा ज्ञान का समय होता है उसमें कभी न कभी ये समस्या आती ही है। तो एक तो हमें अपना एंड रिजल्ट ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी, आप सब भी अपने किसी न किसी समय में स्टूडेंट रहे होंगे, तो अल्टीमेटली तो ये होता है कि भाई एग्जाम पास करना है, वो एंड रिजल्ट होता है, उसी के आधार पर ही वर्ष भर की पढ़ाई का प्लान बनाते हैं। तो इसमें भी हमारा एंड रिजल्ट में बाबा ने एक तो ये बात बताई है कि हम सब को तीन सर्टिफिकेट लेने हैं, आप सबको मालूम ही है, बाबा से लेना है प्रभु पसंद, मन पसंद और परिवार पसंद। तो अगर, और बाबा ने ये भी कहा था कि इसमें सबसे डिफिकल्ट सर्टिफिकेट परिवार पसंद ही है, तो एक तो माइंड में ये जरूर रखना है कि मुझे परिवार का सर्टिफिकेट लेना है, यानी कि सभी को संतुष्ट करना है और सभी से संतुष्ट रहना है। अब ये कहना तो बड़ा आसान होता है लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसमें अगर ये मुश्किल होता है तो एक हम इसमें अपने को इंट्रोस्पेक्शन करें, चेक करें। क्या चेक करें? क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बताया था, जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी संतुष्टता की, तो बाबा ने एक मुरली में चलाया था कि बाबा ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कि सबको संतुष्ट हम कर सके 100%। तो अव्यक्त बाप दादा का क्या उत्तर था? बाबा का उत्तर था कि देखो बाबा, इसमें 5% का ग्रेस देता है, अगर 95% तक आप दूसरों से और दूसरे आपसे संतुष्ट हैं तो ये पास विद ऑनर ही माना जाएगा। तो इसमें एक बात खास ये देखने की है कि अगर मैं कईयों से नाराज होता हूँ, इसका भी मुझे अवगुण दिखता है, इसमें ये दोष है, इसमें ये है, इसका मतलब मेरे अंदर वो कमी है। और अगर मुझे, मैं 100 लोगों के साथ काम करता हूँ और एक दो लोग ही कोई ऐसे हैं जिनका संस्कार मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, यज्ञ की मर्यादा के विपरीत है या कुछ, तो वो परसेंटेज परमिसिबल है, एडमिसिबल है जो बाबा ने बताया है। इसलिए हमें ये देखना है एक तो कि मेरे से अधिकतर लोग, अगर बहुत ज्यादातर लोग संतुष्ट है 95% से ज्यादा, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। और दूसरा, अगर कोई ऐसा है तो वो अपने संस्कारों के कारण असंतुष्ट है, तो एक तो मुझे ये जरूर देखना है अपने अंदर भी कि मैं कहाँ तक इसमें पास हूँ। केवल दूसरे का अवगुण ही न देखें। और दूसरी बात, जो बड़ा है तो वो अगर बड़ा है तो बाबा ने यही बताया था, इसीलिए तो बाबा ने रेस ओपन छोड़ी है। ये पूरा ज्ञान की रेस ओपन है, कोई बहुत पुराने भी पीछे रह जाएंगे और नए भी आगे चले जाएंगे और वो पुरानों से बहुत आगे हो जाएंगे। और इसका कारण यही है कि पुरानों ने ये ख्याल नहीं रखा, बाहर मुखी रहे, दूसरों को देखते रहे अवगुण, तो वो पीछे रह गए। और जो नए भी हैं और जिन्होंने अपने को ही देखा, बस मुझे पास विद ऑनर होना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है, और वो आगे चले गए। और ऐसा होने भी वाला है, बाबा ने कहा था अंत में जब रिजल्ट आउट होगी तो बहुत सरप्राइज देखने को मिलेंगे, और उनमें से एक बड़ा सरप्राइज ये भी होगा। ओम शांति।
थैंक यू भाई साहब। हम जिनके भी साथ रहते हैं तो उसमें पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी गलती हुई है उनसे, तो हम उनकी गलती को चित्त पर नहीं रखें, उनको हम माफ कर दें। आपने तो बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि अगर 95% लोग हमसे संतुष्ट हैं, इसका मतलब ज्यादा कमी हमारे अंदर नहीं है, और अगर अधिक लोग हमसे असंतुष्ट हैं तो मुझे ही परिवर्तन करने की जरूरत है। तो हम अपने आप को भी देखें, क्योंकि बाबा तो हमें स्व परिवर्तन ही सिखाता है। तो पहले अपने को देखें कि मेरा कौन सा ऐसा संस्कार है जिससे टकराव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी अहम होता है और उसके कारण हम झुकते नहीं हैं। तो यदि हमें लगता है कि हमारी गलती है तो हमें सॉरी बोल के माफी मांग लेना चाहिए, और अगर उनकी गलती है तो उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि साथ में रहना है, साथ में सेवा करनी है। तो मन को नेगेटिव रख करके हर समय हम नहीं चल सकते, क्योंकि उससे हमारी वृत्ति वाइब्रेशन पर भी प्रभाव होता है और आसपास के वातावरण पर भी, यज्ञ के वातावरण पर भी उसका प्रभाव होता है। और फिर मन में है तो हम कई लोगों से वो बात भी करेंगे, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, फिर वो एक दो, दो से चार, और धीरे धीरे वो फिर फैलता है। तो कोशिश करके वहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, और जितना हो सके अपने ऊपर अटेंशन देना है, जैसा कि भाई साहब ने भी कहा। अभी दूसरा प्रश्न है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से बाबा चार्ट देखते हैं, लेकिन हम देह भान में सारा दिन रहते हैं। जिस दिन प्रतिज्ञा करते हैं कि आज आत्मभिमानी स्थिति में रहूंगा, मनसा वाचा कर्मणा पाप नहीं करूंगा, परंतु उस दिन पेपर अधिक आते हैं और पाप भी ज्यादा होते हैं। अभी समय कम है, तो क्या इतने कम समय में मैं आगे जा सकता हूं? यह सोचकर भी होपलेस हो जाता हूं, समाधान बताएं। सुधीर भाई जी, समाधान बताएं।
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने अभी रिजल्ट आउट नहीं की है, इसलिए इस बात से निश्चिंत रहें कि मैं आगे जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। हर कोई आगे जा सकता है। फिर बात आती है कि जिस दिन सोचते हैं ये नहीं करें, उसी दिन पेपर आते हैं और ही पाप हो जाता है, घटाने के बजाय बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो माया को चैलेंज करना छोड़ दो। क्यों चैलेंज करते हो? अगर आपको लगता है ऐसा होता है तो माया को चैलेंज नहीं करो, अपनी सहज रीति से रूटीन में पुरुषार्थ करो। जब हम सहज रीति से रूटीन में पुरुषार्थ करते हैं तो उससे हमारे अंदर शक्ति जमा होती जाती है, गुण जमा होते जाते हैं, विशेषता जमा होती जाती है, याद के अभ्यास से पाप कटते चले जाते हैं और हम एम्पावर होते चले जाते हैं। तो जब एम्पावर होते हैं, अचानक से कुछ आता है तो उसके लिए हम रेडी रहते हैं, और जब रेडी रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका सहज सेल्वेशन हो जाता है। इसलिए माया को नहीं ललकारो, सहज रीति से आगे बढ़ो और रुको नहीं। कभी आपको लगता भी है कि ये रिवर्स गाड़ी जा रही है तो रुको नहीं, बस चलते रहो, चलते उस घटना को नहीं देखो, उस स्थिति को नहीं देखो, उस समय को नहीं देखो, बाबा को साथ लेकर के चलते रहो, चलते रहो, वो बात पीछे छूट जाएगी, आप आगे निकल जाएंगे। ओम शांति।
तो जो अपनी कमजोरियां हैं उनको नहीं देखना है, लेकिन जो प्राप्तियां हुई हैं बाबा से, जो भाग्य मिले हैं, उनका चिंतन करते रहेंगे तो सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहेंगे। आपका कहने का भाव यही था। अगला प्रश्न है, हम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है।
हमारा तो पिछले 50 वर्ष का ये अनुभव है कि मुरली जो है वो उस दिन में आने वाले पेपर्स का एक दर्पण है। उस दिन जो भी परीक्षा आने वाली होती है वो जो है हमारे मुरली में बाबा किसी न किसी रीति से कह देता है। देखो कितना मेहरबान है बाबा कि पहले से ही पेपर आउट कर देता है। अब पेपर आउट भी हो जाए और उसके बाद भी अगर हम पेपर न लिख सके पूरा का पूरा, तो फिर ये क्या हमारी ही कमजोरी है? इसलिए मैं तो ये समझता हूँ मुरली को, उस दिन की मुरली को अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन भी होगा और उसका आंसर भी निहित होगा। हमारा तो ऐसा अनुभव है। ओम शांति।
हम ये कैसे चेक करें कि हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म कितने विनाश हुए हैं? फिर इसी से संबंधित है कि किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो कैसे पता चले कि हमारे हिसाब किताब बन रहे हैं अथवा चुकतू हो रहे हैं? आप बताइए।
ये वैसे काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है कि 63 जन्म के हुए या 40 जन्म के हुए या 50 के हुए, अनेक अनेक द्वापर युग से तो विकर्म करे ही करे हैं। इसीलिए उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेजर बाबा ने कोई नहीं दिया है। हाँ इतना जरूर बाबा ने बताया, कई बार मुरली में कहते हैं अगर मानो एक दो चीज याद है, अगर बच्चे आपका स्वपन जो है वो बहुत पवित्र है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप सिल्वर एज तक जैसे पहुंच गए हो, क्रॉस करके। कई मुरलियों में बाबा ने कई कई चीजों के सिम्टम दिए हैं कि अगर ये आ गया तो इसका मतलब समझो कि हम आयरन एज क्रॉस करके सिल्वर एज तक पहुंच गए, आदि आदि। और जितना हमारे विकर्म भस्म होते जाएंगे उतना उतना हम हल्कापन बहुत महसूस करेंगे, योग हमारा बहुत अच्छा लगता जाएगा, हल्के होते जाएंगे। और साथ ही साथ बाबा जो मुरली में बोलते हैं उस चीज को अगर उस दिन ही प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो बाबा बात बोलते हैं कोई भी धारणा की, आप ये समझो वो एकदम ताजा हलवा है, उसी दिन ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। और अगर हम सुन लेते हैं और सुन के ये समझते हैं हाँ ये तो बाबा ने बोला है, कई बार बोलते हैं, अनेक बार बोली है, कोई नई बात नहीं है, तो वो फिर बात वैसी ही रह जाती है और हमारी धारणा में नहीं आ पाती। इसीलिए एक तो हम ये जरूर करें कि धारणा की, हमें याद आता है हम लोगों को शुरू में बताया जाता था कि हर मुरली जो मुरली आती है चार खाने करो पेज के, और एक में ज्ञान योग धारणा और सेवा, और हर एक का पॉइंट अलग 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 लिखो तो उससे थोड़ा स्पष्टता हो जाती है। खैर ये तो हर एक का अपना पुरुषार्थ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उसी दिन ही आप उस बात को वो कर लेते हैं तो वो आपकी धारणा का एक अभिन्न अंग बन जाता है और फिर कोई उसमें कमजोरी की महसूसता नहीं रहती।
तो 63 जन्मों के जो विकर्म विनाश होने की निशानी है, हल्कापन और खुशी कभी भी संबंध में भी आएंगे। दूसरा प्रश्न भी था कि संबंध में आते हैं तो कैसे पता चले कि हिसाब किताब बन रहा है या चुप्तू हो रहा है।
हिसाब किताब अगर बनेगा ना तो आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, मान लीजिए हिसाब किताब बनने का कारण कोई मर्यादा का उल्लंघन है, और आपको माइंड में है कि ये मर्यादा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन पुराने संस्कार जो हैं वो खींच रहे हैं आपको वो कर्म करने के लिए, तो उससे क्या है कि करूं ना करूं, करूं और फिर शुरू में ये होगा, अब बाद में वो संस्कार ही बन जाएगा। आप उसकी तरफ अगर खींचने लग जाते हैं कि ऐसे मर्यादा विहीन कार्य कर लेते हैं, इसका मतलब आपका हिसाब किताब और बनता चला जा रहा है, और उससे आपको बहुत भारीपन का महसूस होगा और गिल्टी कॉन्शियस लगेगा, अंदर पाप की अनुभूति होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी मेरी कर्मेंद्रियों के द्वारा हो गया या ये कर्म मैंने कर लिया। और अगर मेरे पाप भस्म हो रहे होंगे ना तो बस भस्म होंगे और बहुत बहुत खुशी होती जाएगी, हल्कापन महसूस होता जाएगा जैसे बताया, और साथ ही साथ कभी भी उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये करूं या ना करूं, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होगी मुझे ये करना है ये नहीं करना है, जो नहीं करना है उसे नहीं करेंगे और जो करना है उसे ही करेंगे, तो जिससे क्या होगा हल्कापन रहेगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे।
अगला प्रश्न सुधीर भाई जी से है, कर्ज और बीमारी से मुक्ति के लिए किस प्रकार का योग करना चाहिए और हमारे संकल्प कैसे हों? कर्ज और बीमारी से मुक्ति के लिए किस प्रकार का योग करना चाहिए?
ओम शांति। बीमारी तो हम देखते ही हैं, स्पष्ट प्रत्यक्ष होती है, और जब कर्ज की बात आती है तो ये भी भिन्न भिन्न तरह का होता है। एक दुनिया की रीति से पैसे की लेन देन के रूप में कर्ज है, दूसरा फिर जो हमारा कर्म का अकाउंट होता है, 84 जन्मों की हमने ये यात्रा की है, इसमें एक दूसरे के साथ हम जिए हैं, व्यवहार में आए हैं, वहां से भी जो कर्मों का अकाउंट बना है वो भी एक कर्ज के रूप में होता है। तो दोनों से ही मुक्ति पाना है, क्योंकि अभी वर्तमान संगम है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का युग, इसके बाद तो फिर कोई समय आना नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर अटेंशन रखना चाहिए कि जब बाबा कहते हैं योग से हेल्थ मिलती है तो उसका हमें अनुभव होना चाहिए, और जब कर्ज से मुक्ति की बात आती है तो आप समझते हैं कि दुनिया में भी अगर कोई किसी का चुक्तू कर देता है, ठीक है, तो आप देखेंगे वो निश्चिंतता का अनुभव करता है। तो ये निशानी है दोनों बात की कि अगर कर्ज हमारा मुक्त हो रहा है तो जीवन में निश्चिंतता भी आती जाएगी, संतुष्टता भी आती जाएगी, हल्के भी रहेंगे। और जब बीमारी की बात आती है तो उसके साफ सिम्टम है, हम यज्ञ सेवा में एक्टिव रहेंगे, ज्ञान योग के समय आलस्य अलविलापन सुस्ती आदि नहीं रहेगा। ये बहुत माइनर बात है, एक है बड़ी बीमारी आई वो साफ दिखती है, लेकिन ये भी स्वास्थ्य का कनेक्शन है इस बात से, और इन दोनों के लिए संकल्प और योग दोनों काम करते हैं। जब संकल्प की बात आती है कि कैसे संकल्प करें, तो बाबा ने स्पष्ट किया है, बहुत क्लियर किया है कि हमारे संकल्प जो हैं सदा समर्थ, शुभ और पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि जब बीमारी आती है तो पहले पहले काम ही वो करती है कि हमारे संकल्प थोड़ा निगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, चाहे अपने से, चाहे जिन्होंने ट्रीटमेंट दिलाना है उनसे, चाहे जो साथी संभालने वाले हैं उनसे निगेटिव होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक तो इस लहर को हम पैदा नहीं होने दें, आने की अगर कोशिश भी करें तो तुरंत इसका डायवर्शन करें। तो ये श्रेष्ठ संकल्प जो होंगे और पॉजिटिव संकल्प होंगे तो हमें वो वातावरण देंगे जो हमें बीमारी से मुक्ति के साधन भी देंगे, समय भी देंगे, उपाय भी देंगे। ठीक है, तो हमें हमेशा ऐसी स्थिति में पॉजिटिव संकल्पों की तरफ जाना है तो हमारे साथ पॉजिटिव ही घटेगा। और संसारिक रीति से कोई बीमारी है तो दुआ के साथ साथ दवाई भी आवश्यक होती है, तो वो दवाई का प्रबंध भी हमें मिलेगा। और मैं तो अनुभव से ये भी बात देखता हूँ कि कई बार दवाई भी बहुत काम नहीं करती है, खूब ट्रीटमेंट भी कराते हैं, तो जब हमारा बाबा से लाइन क्लियर होता है, योग युक्त होते हैं, बाबा के लिए हम जीवन जी रहे होते हैं, तो बाबा को भी हमारा ख्याल होता है। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे को कुछ हो जाए तो पेरेंट्स को ख्याल रहता है। तो ऐसे भल कर्म का अकाउंट हमारा है, हमारे कर्म के अकाउंट के कारण ही बीमारी है, हमारे कर्म के अकाउंट के कारण ही हमारा योग नहीं लग रहा है, लेकिन बाबा हमारा पिता है, ठीक है, मात पिता है। तो जब हम जो भी हमारी जिम्मेवारी है, चाहे वो यज्ञ में है, चाहे परिवार में है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, जब उसमें हम सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से पार्ट प्ले करते हैं और बाबा के लिए सब कुछ करते हैं निमित्त भाव से, तो बाबा भी हमारा ध्यान रखता है। और कोई ना कोई ऐसा उस समय घटित हो जाता है कि अच्छी दवाई मिल जाएगी, अच्छा ट्रीटमेंट करने वाला मिल जाएगा, ठीक है, और निश्चित रूप से उसका हमें समाधान मिल जाता है। मैं उदाहरण बताता हूँ, ऐसा ही कि एक बार मेरे पैरों में दर्द हुआ 3 साल पहले, ठीक है, सूजन हो गई पैरों में। फिर अहमदाबाद दिखाया, 2-3 स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब दवाई दे दे। मैं पूछूं भाई रोग क्या है ये तो बताओ, बोलो दवाई खाओ ठीक हो जाओगे जी, ठीक है जी, रोग कोई नहीं बताए, ठीक है। तो 1-1.5 महीना दवाई खाई लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर एक दिन मैं शाम के समय बाबा को डाइनिंग हॉल में भोजन करने जा, डिपार्टमेंट से जैसे ही निकला तो किसी ने पीछे से आवाज दी, सुधीर भाई रुको। मैं रुका, बोले आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि चलने में निश्चित रूप से दिखता था, आपको प्रॉब्लम है। कहा प्रॉब्लम, कहते मैं दवाई बताता हूँ। मगर नहीं, दवाई से पहले आप ये बताइए कि बीमारी क्या है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपके पैरों में यूरिक एसिड डिपोजिट हो गया है जो टेस्टिंग में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने टेस्ट कराया तो उसमें यूरिक एसिड आया नहीं। फिर उन्होंने एक सिंपल सी रेमेडी बताई कि भाई आप कैस्टर ऑयल जो है उसको पैरों में लगाइए और 15-20 दिन आप कीजिए, आपको। मैंने किया ट्रीटमेंट, ओके हो गया। तो देखो ना, यज्ञ का कोई पैसा खर्च हुआ, तो वो बात है कि बाबा भी हमारा ख्याल रखता है। और जब योग की बात आती है, ठीक है, तो योग है ही आत्म अभिमानी स्थिति से। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझ करके जीने की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा के गुणों को जितना जितना हम बढ़ाते हैं तो उतनी ही आत्मा की लाइट बढ़ती है। और जब वो लाइट बढ़ती है तभी हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह पाते हैं। तो इस प्रकार से योग भी फिर हमारा सहज हो जाता है। और बाबा ने भिन्न भिन्न रीतियां तो बताई हैं कि श्रेष्ठ स्मृति रखो, तो श्रेष्ठ स्मृति रखते हैं तो योग अच्छा होता है। अभ्यास हम अपना निरंतर जारी रखते हैं तो अभ्यास भी हमें मदद करता है। तो इस प्रकार से योग भी अच्छा होता चला जाता है और बीमारी से भी हम मुक्त होते हैं और कर्ज भी चुक्त होता चला जाता है। और जब चुक्त हो जाता है तो हम मजे में रहते हैं। ओम
थैंक यू। बीमारी के समय एक तो हमें बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। बार बार अगर हम बीमारी के संकल्प करेंगे तो वो बीमारी बढ़ती है। उसकी बजाय सोल कॉन्शियस रहें। जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो जैसे कहा कि बाबा की जो दुआएं, बाबा को भी ख्याल होता है अपने बच्चों का, और साथ साथ फिर जो दवा है वो दवा का भी हम सहयोग लेते हैं, और जल्दी ही वो हिसाब किताब चुप्त हो जाता है, उस कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है मोहन सिंगल भाई जी से है। पुराने संस्कार कभी कभी बहुत फोर्स से इमर्ज होते हैं, उस समय ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं आती, ना ही बाबा की याद, इस कारण हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। पुराने संस्कारों के फोर्स को कम कैसे करें, जैसे ईर्ष्या के संस्कार, लोभ के संस्कार या कोई भी संस्कार, तो जो फोर्स आता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे कैसे कंट्रोल करें?
जब कोई पुराना संस्कार बहुत फोर्स में आता है तो एक्चुअली बहुत खुश होना चाहिए। कैसे? क्योंकि जैसे दीवा होता है ना, बुझने से पहले बड़ी तेजी से टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि पुराने संस्कार धीरे 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 कम हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एकाएक जो फोर्स मारते हैं, फोर्स होते हैं, तो वो इस बात का सूचक है कि वो हमसे 2500 साल की छुट्टी लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए बचा खुचा पूरा दम इस समय लगा रहे हैं कि इसको किस तरह हम हरा दें। तो एक तो हर नेगेटिव को बाबा कहता है, जो भी जीवन में नेगेटिव आए उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, जो भी पेपर है उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे कि ये मेरे लिए अवसर है। तो उससे क्या होगा कि जब वो अवसर होगा वो हमें हमारे आदि स्वरूप की स्मृति दिलाएगा, और जब हम ये समझेंगे अब तो ये फाइनल छुट्टी लेने के लिए आ रहा है, तो हमें भी अंदर खुशी होगी। दूसरी बात कि साथ साथ हम ये भी देखें कि इस चीज के पीछे ना बाबा ने क्या रहस्य है। बाबा का क्या होता है कि बड़े बड़े विकारों को तो हम लोग शुरू में ही जीत लेते हैं, फिर छोटे छोटे और उनके अंश वंश ये जो हैं, ये सब जो रह जाते हैं तो ये फिर अपना असर दिखाते हैं। तो इसके लिए हमारा अटेंशन बाबा और खास खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये वास्तव में एक छोटा सा होगा, एक चिंगारी भी होती है उससे ही भयंकर आग लग जाती है, छोटी सी चिंगारी होती है। इसी प्रकार से अगर छोटा भी अगर अंश रह गया ना, तो वो अंश का वंश जरूर निकलेगा और वो अंत समय में परेशान करेगा। इसलिए हमें ये खुशी होनी चाहिए कि ये अंश अभी ही निकल रहा है, इस अंश को मैं अभी समाप्त कर दूं, जिससे अंत समय जो फाइनल पेपर आए तो उस फाइनल पेपर में मैं पास विद ऑनर होके ही दिखाऊंगा। ये मेरा बाबा से प्रतिज्ञा है कि मुझे पास विद ऑनर होना है।
थैंक यू। जो भी हमारे पुराने संस्कार अचानक इमर्ज होते हैं, तो एक तो जैसे कहा कि वो फाइनल विदाई लेने के लिए आया है, दूसरा हम, मैं ऐसा समझती हूँ कि हम चार्ट रखें अपना, क्योंकि जो बहुत समय से अनेक जन्मों से बने हुए संस्कार हैं वो एकदम तो पीछा नहीं छोड़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं मेरा संस्कार खत्म हो गया, लेकिन जब परिस्थिति का पानी मिलता है या कोई भी ऐसा वातावरण होता है तो वो फिर से इमर्ज होता है। तो अपनी रोज चेकिंग करें और चार्ट रखें रात को सोने से पहले, और अगर कोई विशेष संस्कार बार बार सामना करता है, मानो गुस्से का ही है, ना चाहते हुए भी गुस्सा कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, तो फिर अपने आप को अंतर्मुखी होकर के देखें क्यों मुझे बार बार गुस्सा आता है, क्या कारण है। और फिर अगर हम चेक करते हैं और बाबा को रात को सोने से पहले उसको सौंप देते हैं और फिर अगले दिन के लिए वो अटेंशन रखते हैं, तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि धीरे धीरे उस संस्कार की इंटेंसिटी कम होती है। अगर रोज हमारी चेकिंग है उसके पीछे, तो कम होते होते कुछ दिनों में हम महसूस करते हैं कि हाँ, अब वही परिस्थिति में मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा हमें उसकी वो शक्ति भी देते हैं। और विधियां तो बाबा ने बता ही रखी हैं, रोज मुरली हम सुनते हैं, हमें पता है उस संस्कार पर हमें कैसे विजय पानी है। ईर्ष्या है तो उसको शुभ भावना शुभ कामना से जीतना है, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करनी, हरेक का अपना अपना भाग्य है। ज्ञान तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसे उस समय यूज करना, तो वो जब हम रोज चेकिंग करेंगे और फिर चेंज करेंगे, बाबा के सामने उसे रखेंगे, तो कुछ टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वो संस्कार पर हम विजयी हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, हम प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, उसके आधार पर परिस्थिति आने पर कभी ज्ञान इमर्ज हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, तो महसूस होता है कि काफी पॉइंट्स पर काम करना बाकी है, तो पुरुषार्थ का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हमें पुरुषार्थ करते समय एक सिस्टम महसूस हो कि यथार्थ दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सुधीर भाई।
ओम शांति। ये जीवन बहुत वृद्ध है, बहुत व्यापक है, और एक बहुत ऊंची मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत ऊंचा लक्ष्य है, नरसे श्री नारायण बनना, दैवी स्वर्ग राज्य भाग्य की प्राप्ति करना, बाबा के साथ मिलकर के इस पूरे विश्व का परिवर्तन करना। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हमारे सामने हैं, और हम सब सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, हम सब उसमें जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस यात्रा में, ठीक है, कुछ ना कुछ होना स्वाभाविक है। एक सामान्य सी यात्रा होती है, उसमें भी तरह तरह के व्यवधान भी आते हैं, बातें भी आती हैं, उसके भिन्न भिन्न स्तर हो सकते हैं। स्वयं के संस्कारों के स्तर पर होती है, संगठन के स्तर पर होती है, ठीक है, कंसेप्ट का डिफरेंस होता है, उसके स्तर पर होती है। फिर बात आती है उसका सही अर्थ में उसको क्रॉस करना, उसका सॉल्यूशन पा लेना, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उस समय पर वो ज्ञान की पॉइंट इमर्ज हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सही समय पर सही बात उभर करके आए, जो मुझे उस बात को क्रॉस होने में मदद करे। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे समय पर हम कईयों से कंसल्टेंसी भी लेते हैं, पर हाल वह का वही रहता है, हम उससे उभर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें एक तो ज्ञान में रमण करते रहना, मुरली का अध्ययन करना, और सिर्फ अध्ययन तक उसे सीमित नहीं रखना चाहिए, उस बात को हमें अपनी समझ के स्तर तक डेवलप करना चाहिए। माना कि सहन शक्ति है, हमने उसकी महिमा सुनी, हम उसका वर्णन कर सकते हैं, अभी वर्कशॉप करें तो बहुत पॉइंट निकल सकती हैं, लेकिन जब कभी ऐसा वक्त आता है सहन करने का, तो उस समय जब हमने उसे सहन किया होता है, तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है, सहन शक्ति की वैल्यू क्या है। कभी कोई बात को समाने की आवश्यकता होती है और हम समाते हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है, हमने देखो बात समाई तो कैसे छोटी होती चली गई। अथवा जैसे बात कही कि भी पॉजिटिविटी, ठीक है, घटना आ रही है, पर हम उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस खेल को चलने दो, लेकिन ये भी अच्छे के लिए, जो बाबा ने कहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, जब उस दृष्टि से, तो जब ज्ञान को हम यूज करते हैं, तो जो उसका अनुभव आता है, वो अनुभव के आधार से फिर वो पॉइंट इमर्ज होती है। सिर्फ पॉइंट की रीति से पॉइंट समृद्धि में आएगी तो वो शक्ति नहीं बनती है, वो हमें सॉल्यूशन नहीं दे पाती है उस समय, लेकिन यूज करते करते जब हम उसको, उससे हमारा समझ का स्तर बढ़ जाता है, तो वो समझ हमें सहयोग देती है, और उसी से हमें उस बात का सॉल्यूशन भी मिलता है, और हम उसको सहज क्रॉस कर पाते। इसलिए हमें नॉलेज को समझ के स्तर पर अनुभव के स्तर तक डेवलप करने की जरूरत है। और कुछ था इसमें प्रश्न? पुरुषार्थ का स्ट्रक्चर फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। कोई भी एनर्जी एक दिन में डेवलप नहीं हो जाती है, समझे ना। खर्च जल्दी से हो जाएगी पर डेवलप जल्दी नहीं होती। आज देखिए हम भोजन करते हैं, ठीक है, उसका भी एक लंबा प्रोसेस है शरीर को एनर्जी देने का। कहते हैं भी जो हमने आज खाया उससे संपूर्ण रूप से एनर्जी हमें 30 दिन बाद मिलती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ज्ञान की जो हम खुराक खाते हैं अथवा योग करते हैं अथवा सेवा से दुआएं जमा करते हैं, ठीक है, ये भी धीरे धीरे जमा जमा होते होते हमारी शक्ति बनता है। तो पुरुषार्थ का स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, जो वो कछुए का मिसाल देते हैं, ठीक है, कि भल हमारी गति धीमी हो लेकिन ये निरंतर हो। जब कोई भी पुरुषार्थ हमारा निरंतर चलता रहता है तो निरंतर होने से वो जमा का प्रोसेस चलता रहता है। कई बार हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, वो महीना दो महीना करेंगे फिर उसमें ब्रेक लग जाएगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे पुरुषार्थ करते रहते हैं तो इससे हमारी कनेक्टिविटी जमा होने की बनी रहती है। जैसे कई बार जगदीश भाई जी कहते थे कि एक है योग की अग्नि प्रज्वलित रूप में, लेकिन वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, वो दहकती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से पुरुषार्थ की चेन टूटनी नहीं चाहिए। इसमें पुरुषार्थ का स्ट्रक्चर ये होना कि चेन नहीं टूटने दें। हम जो भी पैटर्न अपनाएं, जो हमें अच्छा लग रहा है पुरुषार्थ, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को जो पुरुषार्थ का तरीका है वो आपको सूट हो। आपके शरीर की अवस्था के अनुसार, मन स्थिति के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार आपका अपना स्ट्रक्चर हो सकता है। बेसिक्स जो है ब्राह्मण लाइफ के वो रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें तौर तरीके अलग, पर उसमें वो चेन बनी रहनी चाहिए। जब चेन बनी रहेगी तो जमा होता जाएगा और हम विन कर जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू सुधीर भाई। इसमें मेन बात यही है कि हम मुरली सुनते हैं, लेकिन सुनने की एक स्टेज है, लेकिन वो समा जाए हमारे अंदर, यानी वो हमारी स्मृति में रहे, तभी वो स्थिति में होगी और वो कर्म व्यवहार में आएगा। हमने दादियों को देखा, बड़ी दादी को हम देखते थे, दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी। बाबा हमें क्यों विचार सागर मंथन करने के लिए बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम उस पर गहराई से सोचते हैं तभी वो ज्ञान हमारा अपना बनता है। तो हम ये देखते थे कि दादी अपने को ज्ञान भूलने का मौका ही नहीं देती थी। हर 2-2.5 घंटे में दिन में दादी मुरली पढ़ लेते थे। रात को सोने से पहले जरूर पढ़ेंगे, फिर सुबह अमृत वेले के बाद, फिर क्लास में मुरली सुनाएंगे, फिर दिन में जब सोकर उठेंगे फिर मुरली पढ़ेंगे। तो पता है कि बाबा ने क्या कहा, कोई भी बात उससे संबंधित आएगी तो वो तुरंत इमर्ज हो जाएगा कि आज बाबा ने ये मुरली में कहा। ये धारणा की बात है और अभी हमें उसे यूज करना है। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, और समय पर अगर दुश्मन सामने आए और हमारा शस्त्र काम नहीं करे तो फिर वो शस्त्र किस काम का। तो मेन बात है कि हम ये अटेंशन रखें कि केवल मुरली को सुनना नहीं है लेकिन उसको रिवाइज करना है और उसको मनन करना है। अब आत्मा की पॉइंट हमें कितने विघ्नों से पार कर देती है अगर हम उसे समय पर यूज करें, तो वो मेरी पॉइंट यूज हो, वही आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास समय प्रति समय। जैसे बाबा कहते हैं घंटे में कम से कम कुछ मिनट जरूर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, विदेही स्थिति का अभ्यास करो, तो थोड़ा तो हमें इस पर अटेंशन देना होगा तभी वो कार्य करेगा। मोहन भाई जी से प्रश्न है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना ये ऊंचा लक्ष्य है, ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं, ताकि इन छोटे लक्ष्यों की सफलता से जो हमें उमंग उत्साह आत्मविश्वास प्राप्त होता है वह ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अतः ऐसे छोटे लक्ष्यों की सफलता का कोई विशेष अनुभव सुनाएं जो हमारे यज्ञ के वर्तमान या पूर्व इतिहास में से हो। आप तो सुना ही सकते हैं क्योंकि आप साकार बाबा के समय से हैं और काफी आपने यज्ञ के इतिहास को समझा है और जिया भी है।
वास्तव में ये बहुत यथार्थ बात कही है कि कोई भी बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान होता है उसे शॉर्ट टर्म प्लान्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, मीडियम टर्म प्लान होते हैं एंड लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। अगर हम अपने ज्ञान के हिसाब से सोचें तो लॉन्ग टर्म प्लान हम सबका है भाई लक्ष्मी नारायण बनना। सतयुग में जो है जो ऊंच से ऊंच पद पाना, पास विद ऑनर होना। मीडियम टर्म प्लान ये है टाइम वाइज कि उसको हम बीच बीच में शॉर्ट टर्म प्लान के आधार पर अचीव करते चलें। पहले सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्लान यानी कि यूजुअली वो प्लान हफ्ते से लेकर एक मास तक का हो सकता है, वो है शॉर्ट टर्म प्लान। फिर मीडियम टर्म प्लान जो है वो एक महीने के बाद से लेकर 6 महीने तक का और हो सकता है, साल भर तक का हो सकता है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान तो हमारा सदा साथ साथ चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल बाबा का हम बताएं तो बाबा का भी, तब आप सबने भी यज्ञ का इतिहास सुना है। बाबा ने जब देखा, हाँ गुलजार दादी ने जब ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखा तो उन्होंने आके बड़ी दीदी से पूछा कि, और मम्मा से कि वो ब्रह्मा बाबा कौन है, ये बाबा तो हमारे पास यहाँ पर है। तो मम्मा को भी उसका उत्तर नहीं था, तो मम्मा ने कहा कि तुम बाबा से ही पूछना। तो फिर उन्होंने जब बाबा से पूछा तो बाबा को भी तब नहीं था इसका क्लैरिटी, क्योंकि ये यज्ञ के शुरू की बात है। तो बाबा ने देखो कहा गुलजार दादी को, तुम उन्हीं से ही पूछना कि आप कौन हो और आप बाबा की तरह दिखते हो और बाबा तो हमारे पास वहां पर नीचे है। तो फिर सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा ने पार्ट खोला कि मैं सूक्ष्म वतन वासी हूँ, ये सब आपने इतिहास में पढ़ाई है, और मैं बाबा की संपूर्ण स्टेज हूँ। तो जब बाबा को ये आके बताया तो उस दिन से बाबा का ये एक लॉन्ग टर्म प्लान तो एकदम फिक्स बहुत क्लियर हो गया कि मुझे वैसा बनना है। और फिर बीच बीच में भी कई बार जब संदेशी जाती थी तो बाबा पूछते थे, तुम देखना कि उस ब्रह्मा में और मुझ में क्या अंतर है। तो वो आके बताती थी कि बाबा बहुत कोई खास अंतर नहीं है, सब कुछ वो है, लेकिन उनमें तेज बहुत है, उतना तेज आप में यहाँ पर देखने में नहीं आता। तो बाबा को और क्लैरिटी होती जाती थी। तो इस प्रकार से जितना जितना हम अपना पुरुषार्थ का टाइम वाइज प्लान बनाते रहेंगे और जब वो अचीव करते रहेंगे तो उससे हमारी क्लैरिटी होती जाएगी कि हाँ मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ और यहाँ तक पहुँचना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को अभी ये थोड़ा थोड़ा ये कई बार ये अनुभव होता है जो अंग्रेजी में कहा जाता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी कि आने वाली घटनाएं पहले से ही उसका आभास करा देती हैं। तो इतने समय के बाद कई चीजों का हमें आभास होने लगता है कि हाँ अब ये होने वाला है, लौकिक अलौकिक और हर रीति से। तो हर एक चीज की क्लैरिटी जब होती जाएगी तो बुद्धि की लाइन उतनी क्लियर होती जाएगी, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाएगी उतना उतना जो ये स्पष्ट होता जाएगा कि अब क्या हमें करना है और कितना बाकी है और कितने तक हम कर चुके हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जितना जितना आप बढ़ते रहेंगे उतना उतना क्लैरिटी बहुत आती जाएगी, और क्लैरिटी के साथ साथ अपने जो भी संकल्प है उसमें सफलता की सिद्धि साथ साथ मिलती जाएगी। ओम शांति।
थैंक यू। फरिश्ता बनने के लिए जैसे बाबा हमें अनेक विशेषताएं बताते हैं, तो उन विशेषताओं में से एक एक विशेषता को हम पुरुषार्थ के लिए ले सकते हैं, और इस तरह से फिर संपूर्ण फरिश्ता हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा भविष्य स्वरूप सभी का होना है ब्राह्मण सो फरिश्ता, उसे भी बीच बीच में हम इमर्ज करें। जैसे बाबा कहता है फरिश्ता वो है जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, सर्व रिश्ते एक बाप से। तो बीच में अपने को चेक करते रहें कि कहीं मैंने कोई आधार तो नहीं बना रखे, बाबा के अलावा भी मेरा कोई कोई विशेष सहयोगी है, कोई विशेष साथी है। या बाबा कहते हैं फरिश्ता माना डबल लाइट, जिसके मन पर कोई बोझ नहीं है, सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं, मेरी जिम्मेवारी नहीं, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा करण करावनहार है। तो इस तरह से जो फरिश्तेपन की विशेषताएं हैं, वो एक एक विशेषता को लेकर के उस पर पुरुषार्थ करते हुए वो जैसे अपना माइलस्टोन बना करके हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए। अब अगला प्रश्न है सुधीर भाई जी से। बाबा हमें भविष्य 21 जन्मों की बादशाही के बारे में कहते हैं, जबकि संगम का वर्तमान समय ईश्वरीय जन्म वर्तमान में आता है और भविष्य में 20 जन्म होते हैं, तो फिर 21वां कौन सा है?
ओम शांति। कौन सा है वो 21वां? ये हाथ उठाएं जो 21वां जन्म समझते हैं, ये हमारा ये 21वां जन्म है, हाथ उठाएं जरा। ये तो सारे हाथ उठा रहे हैं, ये पहला है। कहीं से भी गिनती कर लो, मतलब 20 और 21 एक गिनती कर लो इसको, तो 20 वो है, 20 उनको गिनती करो तो 21वां ये है। तो सब तो कह रहे हैं ये जन्म है, तो फिर आंसर क्या दूं? यही है ना। फिर भी किसी को डाउट है तो बोलो भाई। ले जी आंसर हो गया जी। ओके,
तो ये ईश्वरीय जन्म ही उस एक जन्म।
अब इसको थोड़ा ये जो जैसे कहा ना कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राज्य भाग्य का वर्षा,
हाँ 21 जन्मों की बादशाही
बादशाही। तो बात ये है कि भाई ये बादशाही है या नहीं है?
नहीं, ये स्वयं की बादशाही हो गई,
ये स्वयं की बादशाही हो गई। तो मतलब ये भी बादशाही है।
आप बेफिकर बादशाह,
बेफिकर बादशाह,
स्वराज्य अधिकारी।
अभी लॉकडाउन में भी आपको प्रेस किए हुए कपड़े मिल रहे हैं, आपसे बड़ा कोई बादशाह है? बताओ प्रैक्टिकल। देखो मैं क्या बहुत थ्योरिटिकल आदमी नहीं हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी। बादशाही है कि नहीं है? ठीक है, लोगों को झंझट है, राशन खरीदने का भी झंझट है, खतरा है। ठीक है, यहाँ सारा राशन हमारे मिश्रा भाई जी ने, बाबा ने, दादियों दीदियों ने भरपूर करके रखा है। बादशाही नहीं है तो क्या है? बादशाह माने जिसके भंडारे भरपूर। तो लौकिक रीति से देखें तो भी बाबा ने कोई कमी नहीं रखी है, और अलौकिक रीति से जब देखते हैं तो हमारे जैसा स्वराज्य अधिकारी कोई है? स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के राज्य भाग्य के अधिकारी। तो स्वराज्य में कहीं किसी को कमी नजर आती है? सब है ना स्वराज्य अधिकारी। ये कभी कभी माया पकड़ लेती है, जब माया पकड़ लेती है तब लगता है ना। देखो बाबा साथ है, ठीक है, साहों का साह साथ है, ठीक है। तो इसलिए उस समय भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे भाई साहब ने कहा वो एक अवसर होता है, ठीक है ना। बाबा कहते हैं कि कोई भी बात आती है संस्कार के रूप में, परिस्थिति के रूप में, मन बुद्धि को हिलाने वाली, अपने राज्य भाग्य को हिलाने वाली, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर होता है। वो अवसर ही हमें विजयी रतन की स्टेज तक ले जाता है, और वही हमें विजय माला पहनाता है। क्योंकि पेपर तो आखिर होने हैं ना, पेपर तो होने हैं, तो उसमें घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। बाबा साथ है, लक्ष्य मंजिल को बदलना नहीं है, हिलाने वाली कितनी बात आए, मंजिल को बदलना नहीं है, मंजिल राह को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य से पीछे हटना नहीं है, ठीक है। और बाबा की मदद से सब सहज क्रॉस हो जाता है, सब सहज क्रॉस हो जाता है। एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे बुलाएं और बाप हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा सच्चाई सफाई चाहिए। तो जब बाबा साथ हो गया तो कोई बात ठहर ही नहीं सकती, सहज स्वराज्य करना सहज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बस हमें क्या करना है, हमें इस जन्म की राजाई को, ये बहुत बड़ा वर्षा है जिसको ईश्वरीय जीवन कहते हैं, ईश्वरीय जन्म कहते हैं, इसमें सच्चाई सफाई को बढ़ाते जाना है। वो किस उसका विस्तार बहुत है, सच्चाई सफाई से जीना है, सच्चाई सफाई से चलना है, तो ये जन्म भी एकदम बादशाही का, ठीक है, स्वर्गिक जीवन का अनुभव कराएगा, जिसे बाबा हिरेतुल्य जन्म कहते हैं।
और इस जन्म में तो एक एडिशन और है कि बाबा हमारे साथ है, बाकी 20 जन्म में तो बाबा नहीं होगा। तो सर्व प्राप्ति संपन्न जिसे कहेंगे, वो वास्तव में ये जन्म है, ये ईश्वरीय जन्म है, जिसमें भगवान भी, स्वयं शिव बाबा भी हमारे साथ हैं। एक अंतिम प्रश्न शॉर्ट में, आदरणीय मोहन भाई जी, कुछ दिनों पूर्व बाबा ने अव्यक्त वाणी में 4 प्रकार की सेवाओं के बारे में बताया था, आत्माओं की सेवा, प्रकृति की सेवा, वायुमंडल की सेवा, भूत प्रेत की सेवा, तो इन सब की सेवा कैसे करें?
आत्माओं की सेवा तो आप सब अनुभवी हैं ही कि किस प्रकार से आत्माओं की सेवा, आपकी भी सेवा हुई और आप भी बाबा के ये बच्चे बने। वर्तमान समय ऐसा, और ये मेरे ख्याल में डिटेल में बाबा ने आपकी बार ही बोला है, भूत प्रेत की सेवा, इसका मतलब क्योंकि कुछ आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो उन्हें गर्भ में शरीर तैयार नहीं मिलता है, तो वो आत्माएं अधिकतर भटकती रहती हैं कुछ समय तक, जब तक कि उनको गर्भ में शरीर तैयार न मिले। और वर्तमान समय ऐसी परिस्थिति लगती है, प्रतीत होती है कि ऐसी आत्माएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना का भी आप देख रहे हैं, प्रकृति का भी साइक्लोन वगैरह ये सब जो आ रहा है, और अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं हर एक में, जो भी मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं एकाएक ही, तो इस कारण से उनको जब तक शरीर तैयार नहीं मिलता है वो भटकती हैं, और इस कारण से ही भय का और निराशा का वातावरण इसी कारण से है। जहाँ भय है, निराशा है, वहीं पर दुख और अशांति है। और नेचुरली जिन परिवार से आत्माएं शरीर छोड़ के जाएंगी तो वहाँ पर दुख, अशांति और ये सब होगा ही होगा। तो इसीलिए एक इन आत्माओं की भी सेवा करने की है। अब कैसे करने की वो साथ साथ बताते हैं। मनुष्य आत्माएं हैं, उनको तो बाबा ने बताया है सुबह का अमृत वेले का समय अपना स्टॉक जमा करने का है, और शाम का समय डिस्ट्रीब्यूट करने का है, जो भी शक्तियां हम स्टॉक करते हैं, और सब आत्माओं को एमर्ज करते हुए और उनको हम शक्ति की, और विशेष करके बाबा ने वर्तमान समय 4-5 का बताया है, ज्ञान का, सुख का, खुशी का और शक्ति का, ये खास करके इस समय आवश्यकता वो है, क्योंकि आत्मा अधिकतर दुखी और अशांत आदि हैं। दूसरी बात कि जो आत्माओं की हम सेवा करने, कई आत्माओं की सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए, कि वो आत्माओं को हमें जब हम अमृत वेले होते हैं, योग करते हैं, तो उन आत्माओं को भी हम एमर्ज करें ऊपर, ऊपर ये एमर्ज करके ऐसा अनुभव करें कि बाबा से शक्ति मुझे मिल रही है, प्रकाश, लाइट, माइट मिल रही है, और मेरे द्वारा उन आत्माओं तक भी जा रही है जिन आत्माओं की मैं सेवा करना चाहता हूँ। और बाबा ने बताया है व्यक्तिगत सेवा की बात नहीं बल्कि इन जनरल सभी की सेवा करनी है। दूसरा बात क्या बताया था, किसका? प्रकृति की। प्रकृति की सेवा का तो बहुत बड़ा वो है, और उसका लक्षण ये है कि हमारा शरीर ये पांच तत्वों का बना हुआ है, और पांच तत्वों के प्रकृति के इससे बने होने के कारण इसकी सेवा हम जरूर करें, प्रतिदिन करें। मुझे याद आता है 31 दिसंबर 1999 पिछली शताब्दी का लास्ट डे था। दादी जानकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और दादी जानकी लोटस में थी, और यहाँ पर बाबा आए हुए थे। 31 दिसंबर को बाबा आते ही हैं, तो जब बाबा की मुरली हो गई तो निर्वैर भाई और दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी गए बाबा के पास और बताया कि बाबा जानकी दादी की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ही सीरियस है, जिसको बुलाना हो बुला लो। और ये तो बाबा ने एक ही लाइन बोली थी, नहीं बच्ची वो प्रकृति जीत है और ठीक हो जाएगी, और बस। जो इतनी सीरियस थी उसके बाद आप जानते हो अभी इतने लगभग 20 वर्ष तक उसके बाद कितनी सेवा उन्होंने पूरे विश्व भर में की घूम के। तो एक बार दादी से पूछा कि दादी आप कैसे करते हो तो प्रकृति की, तो दादी ने यही बताया था कि मैं जितनी अपनी सेवा करती हूँ आत्मा को शुद्ध करने की, साथ साथ मेरा लक्ष्य ये रहता है प्रकृति को भी मैं रोज दान दूं। तो इन पांचों तत्वों को मैं एमर्ज करती हूँ थोड़े थोड़े समय के लिए, और इनको मैं दान देती हूँ, बस शक्ति का, शांति का, आनंद, जो बाबा कहते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने भी यही किया, और जो प्रकृति का दान करते हैं ना, प्रकृति उनका अंत समय समय तक साथ देती है। और ब्रह्मा बाबा का भी देखा, वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाबा को भी जब शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने, तो उस समय बाबा को भी जैसे ये खुद आभास हो गया था, और इसीलिए यहाँ तो ये समय नहीं है, लेकिन वो आभास हो गया था कि कैसे मैं आज शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो उस दिन के बचे हुए पेंडिंग काम बाबा ने सारे निपटा लिए, और अंत में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ा। और वो तभी छोड़ सकते हैं जब प्रकृति के तत्वों के साथ हम अपने आत्मा के गुणों को मैच करते जाएंगे, यानी कि प्रकृति में जो जो गुण हैं उन गुणों को हम अपनाते जाएंगे, तो प्रकृति भी अंत तक हमारा साथ देती जाएगी। और लास्ट कौन सा है, एक वायुमंडल का। हाँ, तो बाबा ने बताया है कि वायुमंडल वृत्ति से बनता है। हम सब लोगों ने मन, वचन, कर्म ये सब तो करा ही है, लेकिन वृत्ति मन से भी बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। तो हमें ये चेक करते जाना है कि हमारी वृत्ति कितने तक हमारा साथ दे रही है, हम जो चाहते हैं बिल्कुल। और वृत्ति का टेस्टिंग कैसे होता है, वृत्ति का टेस्टिंग होता है मुख्य रीति से स्वपन से। स्वपन में हमारी जितनी शुद्धता पवित्रता होगी उतना ही, इसका मतलब हमारी वृत्ति तक हम पहुंच गए हैं। मंशा तक तो ज्यादातर हम सब पहुंच ही गए हैं। बाबा ने बताया था एक बार कि बच्चों ने ये पवित्रता तो धारण की है, उसमें बाबा सर्टिफिकेट देता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प बच्चों को अभी भी आते हैं। इसीलिए अभी व्यर्थ संकल्पों को जीतने की आवश्यकता है, और व्यर्थ के बाद नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज है वृत्ति की। तो जितना वृत्ति को भी हम शुद्ध करते जाएंगे उतना हमारे जो वातावरण है चारों तरफ वृत्ति से ही वातावरण बनता है। आप समझ सकते हो, मानो कहीं पर क्लब में जाते हैं तो उस समय सबकी वृत्ति कैसे होती है, आनंद की, मौज की, मैरिज में जाते हो तो वो वातावरण होता है, और शमशान घाट में जाओ, किसी की मृत्यु में जाओ तो उस समय कोई बोलता भले कुछ नहीं अच्छा है, लेकिन वृत्ति सबकी वैराग्य किसी होती है, उस समय वातावरण भी बिल्कुल वैसा ही बना होता है। तो इसीलिए जितना हमारी वृत्ति को हम कंट्रोल करते जाएंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू भाई जी। इन सभी चारों जो कहा, प्रकृति, आत्माएं या भूत प्रेत, वायुमंडल, उन सब के लिए हमारी पावरफुल मनसा चाहिए। तो जितना हमारी मनसा श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, उतना ही सहज हम इन सब की सेवा कर पाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि हम व्यर्थ और नेगेटिव में अपने मन को ना लगाएं, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गवाएं। जितना हम पॉजिटिव होंगे, जितना हम ज्ञान युक्त होंगे, जितना श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन चलता रहेगा मन में, उतना ही मनसा पावरफुल होगी और ये सेवा सहज हमारे द्वारा होती रहेगी। तो अभी यही सेशन को समाप्त करते हैं। आदरणीय मोहन भाई जी का, सुधीर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ। और सभी भाइयों के, सभी के प्रश्न तो नहीं हो पाए, लगभग आधे प्रश्न हम कर पाए हैं, पर मैं समझती हूँ कि जिनके प्रश्नों के उत्तर मिले हैं वो संतुष्ट हुए होंगे। संतुष्ट हुए हैं तो हाथ हिलाइए। थैंक यू। ओम शांति।